તારીખ 4/10/1994 શ્રી સમયસર કલશ 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 10.
प्रमाद नहीं है मन, अब दूसरे कार्य में जो नहीं लगते हैं પરિપૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સર્વથા નિર્વિકલ્પ તો ઉપની નિર્વિકલ્પતા પર ઉતરા જોર ચાલતા જોર વિકલ્પ કે વિરુદ્ધ ચાલતા પર ઉપને સૂક્ષ્મ વિકલ્પ ભી ઉપકો પોતાતા નહીં સૂક્ષ્મ વિકલ્પ કા ભી નિષેધ કરતા હૈ इसलिए वहां प्रसाद को बंद करता है तो प्रोत्साहन देने की बात है
भूमिका बंद कसाय की है भूमिका में बंद कसाय है
भूमिका मतलब
जिस समय में उस प्रकार का विचार करता है उस समय में भूमिका जो मंद रूप है
कम पूर्व भूमिका में बंद कसाय होता है तो उसमें अपने प्रकार में होता है लेकिन उस पर दृष्टि नहीं है उस पर जोर नहीं है उसकी गिनती नहीं है उसकी अवमानना अवगणना होती है जब तो टूटता है तो तोड़ने का पुरुषार्थ की जाति अलग है यानी जैन दर्शन के सिद्धांत में और जैन दर्शन के खास करके अध्यात्म के सिद्धांत में किसी भी प्रकार का चाहे मंद हो तीव्र हो किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देने का सिद्धांत ही नहीं है पुण्यानु बंदे पर जिसको होता है उसको वो भी मान नहीं है क्योंकि वो जड़ जाति का पुंजर जाति का विभाग जाति का विरुद्ध जाति का परिणाम है इसलिए उसको प्रोत्साहन देने का अनुमोदन करने का सवाल है अगर उसको प्रोत्साहन जो देते हैं अनुमोदन देते हैं तो उसका अभिप्राय का जो और श्रद्धा का जो श्रद्धा ज्ञान गुरु का जो बहुत बड़ा जो विपरीतता उत्पन्न हो जाती है तो तत्वदृष्टि मानी है छूट जाती है तत्वदृष्टि में तो अकेला अपना आत्मतत्व ही उपाधि है क्या तत्वदृष्टि से तो अपना आत्म तत्व ही उपाधि है और कुछ वाले नहीं है
ये भी बंद कोटि नहीं है ये भी बंद कोटि नहीं है स्वीकार के जो भूमिका है ये है बंद कोटि
बंद कोटि में तो बंद का अभाव करना इसी का नाम भोग है अधिकार को भोग क्या चल रहा है उसमें बंद को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए कभी दिया जाए तो बताए रस भी मिल हुआ है का पुरस्कार करता है यह तो पहचान किया है तो प्रज्ञा श्रेणी को अंदर में ले जाते हैं तो बताए रस भी मिल हुआ है बताए बंद हुआ है बताए रस भी बंद हुआ है बताए रस तीव्र हो गए और बताए बंद हो गए उसको तो ऐसा प्रयास करेगा भी नहीं तो इस प्रकार का पुरस्कार तो उसको नहीं कर सकता ठीक है बताए बंद हो पर सताए रस तीव्र हो तो इस प्रकार को समय जाति का पुरस्कार किसी को भी जब सताए रस तीव्र है तो सताए कितना भी बंद करो जैसे द्रविलिंगी का दृष्टांत में क्या बात आता है द्रविलिंगी है उनको सुखी इच्छा पीना धोने के लिए जाता है सुखी इच्छा पीना नहीं जाता है तो उनको सताए अधिक बंद हुआ है बहुत बंद हुआ है लेकिन सताए रस मुझे नहीं हुआ है सताए रस पूरा का पूरा पड़ा है इसलिए वो देवलोक में जाएगा वहां से एक इंद्रिय होकर के शरीर में चला जाएगा देह में एक इंद्रिय भया आता है नहीं पैदा क्यों बचता है देव एक तो उनको वहां जो भोग उपभोग है उसमें उतना रस आता है उतना रस आता है तो रस के कारण परिणाम को जाते हुए उनको जो सके चला जाए हाँ बिल्कुल मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कसाय रस को मंद करे कसाय रस को तोड़े और ध्यान कसाय रस पर दे कसाय पर नहीं कसाय रस पर ध्यान दे इसलिए तो पहले बंद नहीं करा दिया तीन मुख्य विचार इस ग्रंथ में चलता है
गुरुदेव जी साहब ने यह बात स्पष्ट किया है आचार्य महाराज कि जो राजा जी भाव में चिकनापन है वही रस है और वही बंध तत्व है। कारण वर्जना बंध का कारण नहीं है, उसका उदय भी बंध का कारण नहीं है, उसके वो कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है और सब कुछ बातें बताए बंध का कारण बंध तत्व है। वो
स्वरूप शांति चंद्रमा अनंत तेज भरा है
चिंतन का अचिंत्य है, चिंतन में कोई नहीं ले सकते, चिंतन में लेने को जाए मन के साथ विचार करने को जाए तो पकड़ में नहीं आता, अतिंद्रिय ज्ञान में वो ज्ञान में आता है, अंतर्मुखी अतिंद्रिय ज्ञान में तो फिर परम प्रकट होकर शुद्ध पर्याय में वो परम प्रकट होकर अचिंत्य करती है, वो कांति भी पर्याय में अचिंत्यता पैदा करती है। द्रव की कांति तो अचिंत्य है ही, लेकिन पर्याय में जो वो कांति प्रकट होती है तो पर्याय भी अचिंत्य हो जाती है, उसका भी चिंतन नहीं कर सकते, द्रव का तो नहीं कर सकते, लेकिन एक समय की शुद्ध चिंतित स्वरूप कांति प्रकट हो रही है उसका भी चिंतन नहीं कर सकते, चिंतन का विषय वो नहीं बनता है। उसका अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान में आता है वो अचिंत्य द्रव, दूसरा कोई नहीं है, वो अचिंत्य द्रव सहज स्वाभाविक नीज स्वरूप है, ये तो अपना स्वरूप है, वहां ऐसा निश्चय तो नाक्ष पदार्थ है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, देखो सत्पुरुष पदार्थ है, उत्साह उत्साह है, ऐसा निश्चय प्रकाशित करने वाले सत्पुरुष का तो है, उस पर कितना माने कि जिसका पार नहीं हो ऐसा अपार उसका हम मानते हैं। तो फिर बहुत विशिष्ट प्रकार के भाव निकल गए हैं तो फिर वो डाल देते हैं अपने गुरु के प्रकार में, उसके माध्यम से देखा है और देखने दिखाया है क्या किया है ऐसा कहना नहीं, फिर तो प्रभु आप वर्तु चरणाधीन गुरु आत्म सिद्धि में, फिर तो प्रभु ये दिखाया ऐसा नहीं किया, ऐसा कहीं क्यों नहीं लिखा, क्या लिखने को नहीं आता था, आपने क्यों लिखा, तो कोई ऐसी घटना घटित होती है घटित होती है तो उसको घटाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, वो सुख का अध्यात्मक है अध्यात्मी होते हैं वो सुख हो जाते हैं तो कहेंगे पक्ष हर किसी का ले नहीं सकता दे नहीं सकता, कोई किसी का ले सकता नहीं दे सकता, ये बात कैसे कही, ये बात में कुछ मर्म है इसलिए कही, तो ये मर्म का पता कैसे चलता है, तो ये मर्म का पता इस स्थिति में जो आकर के अनुभव करता है उसको पता चलता है, दूसरे को इसका पता ये और अपना अनादि से अनजाना हुआ परमात्मा के प्रेम का दर्शन करें और उस दर्शन कराने के लिए वो किस प्रकार का प्रयोग में वो आंख देते हैं सहकार देते हैं, कार्य खुद करते हुए भी वो कैसे उनको उत्तेजित करते हैं, तो अनुभव होता है तो पता चलता है वो इतने हद तक काम होता है, तो हमको दिया आत्मा हमको दिया हमारे पास था हमारी आत्मा उनको उसने दिया था ऐसा उनको भाव आए बिना उसको कहते हैं कि अपार उतार बस ये गुरु चरण में जो आया उसका इनको यहां से खत्म हुआ, हर जीव अपने अपने युगों में स्वास्थ्य हुआ था,
इस घोड़े पे से उतरे बिना मैं परमात्मा हूँ वो मान बैठने वाली, तीन लोग का नाश मैं हूँ ऐसा मेरा स्वरूप है, तो बात कब कहते थे? पहले तो पूरा का पूरा वो खत्म होता है, कहाँ खत्म होता है तो गुरु का है। जब वो खत्म हुआ तो खत्म से खत्म, फिर अपनी कोई बात नहीं, इसमें तो दृष्टांत देते हैं कि चैत्र वैशाख का धूप का दिन हो, दोपहर को 12 बजा हो और श्री गुरु एहसास है कि ये तो अमावस्या की अंधेरी रात है, क्या कि पूनम का चंद्र ऐसा नहीं बोले, उनका चंद्र बोले तो मानने के तैयार नहीं है क्योंकि हमको धूप लग रही है, लेकिन चंद्र तो नहीं है कि अमावस्या की अंधेरी रात है, तो मेरी बुद्धि में तो बात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुमको इस बात का कोई विश्वास आता है क्या, मानने को तैयार है क्या? ये बात कितने हद तक तैयार है? इसका मतलब क्या? मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ समझता ही नहीं, अगर मैं कुछ समझता तो मेरी हालत अनाज से परिभ्रमण में क्यों रहती? अगर मैं कुछ समझता तो अनाज से मैं परिभ्रमण क्यों करता? सवाल कर रहा हूं, इसलिए कुछ नहीं। तो बचने का उपाय करे ना, ये परिभ्रमण का भवरोग है और क्रोनिक है, इतना क्रोनिक है कि इससे झटका होता ही अनंत काल का क्रोनिक है, इसलिए महाभयंकर है। ऐसा है परिभ्रमण को ज्ञानियों ने सिर्फ परिभ्रमण नहीं कहा है, भयंकर संरक्षण भयंकर भाव भरने कहा हो राशि हो भयंकर परिभ्रमण कहा है भी भयंकर क्योंकि भयंकरता भावो तो बच्चे मिले तो जाने के धर्म में लेना है भी क्या कहते हैं तेज से बात करते वह आत्मा तो वह आत्मा को तो जिसका तेज अनंत अंतरंग में तीर है तो तेज कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ऐसा नहीं है, अनादि अनंत जैसा है वैसा अनंत ही रहता है, उसमें कभी गति नहीं होती, तीर तेज है और निर्मलता से वेदीप्यमान है, वेदीप्यमान है प्रकाशित है अतिशय प्रकाशित है, तो झांका नहीं दिखता अतिशय प्रकाशमान दिखता है, ऐसा जो चैतन्य का प्रवाह है उस प्रवाह में वो प्रज्ञा से अपने आत्मा को आत्मा में मग्न कर देती है, तीर कर देती है, आत्मा में लीन कर देती है और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती है, और जो बंध भाव है वो अनात्म भाव है अज्ञान भाव है, चाहे जो विकल्प किसी भी प्रकार का हो बंध है तो बंध ही है, निश्चल करती हुई इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है, पूरा का पूरा भिन्न करती हुई पड़ती है, थोड़ा सतत रखती हुई नहीं पड़ती है, पूरा भिन्न करती है, हमारी चीज है हमारे विरुद्ध है, फिर जो 294 गाथा था उसी गाथा का स्पष्ट रूप का है, उसका भाव कहते हैं पंडित जी यहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है,
आत्मा और बंद को निरोध करने रूप एक कार्य है, वो कार्य होता है उसका कोई न कोई कर्ता होता है, तो उसका कर्ता कौन है, तो उसका कर्ता आत्मा है, भिन्न भिन्न करने का कर्ता आत्मा है। परब्रह्म की अपेक्षा से भिन्न किया और अपने स्वरूप की अपेक्षा से स्वरूप में अपने को अभिन्न किया, तो अपना अभिन्न करने का कार्य भी आत्मा ने किया, ऊपर से भिन्न करने का कार्य भी आत्मा ने किया। वहां करण के बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा, करण माने साधन, जिसे कार्य करता है उसमें तीन बातें होती है, एक कार्य करने वाला, एक कार्य स्वयं और एक कार्य करने का साधन, तीन कार्य। अगर वे कार्य संपन्न होगा वहां करण के बिना साधन के बिना किसके द्वारा कार्य करेगा, इसलिए करण भी आवश्यक है साधन भी चाहिए। हमको धर्म करना है तो धर्म करने का साधन भी चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे कार्य करने में हमको साधन नहीं
है, अनादि जो बंद है, अनादि जो बंद है उसका साधन भी स्वयं था, उसका साधन भी स्वयं था, उसका साधन की वस्तु में था, तो ये साधन की आप अपेक्षा नहीं किया, ऐसा में अगर कदम बंद करता कौन सा साधन है, तो ऐसा वितरित कार्य में कोई साधन भी, तो अवितरित कार्य में भी साधन की आवश्यकता, दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब फिर हमारी आत्मा ही हमको धर्म प्राप्त करने में साधन संपन्न, साधन लाना पड़ेगा कि साधन संपन्न ही है, लेकिन हमको उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो दूसरे दूसरे साधन को लग जाता है। लोग कार्य में तो जाता है, लोग जाता है, लोग कार्य जाता है, तन मंदिर में देव जी जन देव लोग भगवान को बिना सत्य देखते हैं, लेकिन देव को इसे देखते हैं, तन मंदिर में देव जी जन देव देखो आज से बने देखा है, देखो आज के लिए घाट्यास्पद बात है, प्रभु इसका खुद प्रभु है, अपनी प्रभुता के लिए तो जगह जगह में इच्छा मानता है, तो उसको आदर्श महान आचार्य रविंद्र आचार्य दिगंबर आचार्य है, सुंदर वासी संत है, किसके द्वारा कार्य करेगा, साधन को, साधन को चाहिए, इसलिए करण भी आवश्यक है, निश्चय में से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता, निश्चय से देखा जाए तो कर्ता और करण भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकता, मैंने सौ कार्य भिन्न हो ही नहीं सकता, शरीर में भी और पर्याय में भी अभिन्न होता है, निश्चय से कर्ता से करण भिन्न नहीं होता, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी में बुद्धि ही इस कार्य में करण है, प्रज्ञा शरीर जो आत्मा से अभिन्न है वही इस कार्य में बंध को भिन्न करने के कार्य में साधन है। क्या नाम दिया, ज्ञान ही साधन है, ऐसा दिया, अनुगुण तो अनंत है आत्मा में, आत्मा में अनंत शक्तियां अनंत गुण होने से भी ज्ञान ही साधन है,
जिससे देवज्ञान करके स्वामी गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। करण है आत्मा से अनादि बंध ज्ञानावरण जो कर्म है उसका कार्य भावबंध तो राजाधिक है तथा नो कर्म संधिक है। आत्मा में तीन प्रकार के बंध ज्ञानावरण का बंध राजा की भाव कर्म का बंध संधिक नो कर्म तीन प्रकार के बंध है। बुद्धि के द्वारा आत्मा को शरीर से ज्ञानावरणाधिक द्रव कर्म से तथा राजा जी भाव कर्म से जिन एक चैतन्य भाव मात्र अनुभव ज्ञान में लीन रखना अनुभव ज्ञान में ही लीन रखना तो यही आत्मा और बंध को दूर करना है। तो पर्वत में लीन होना इन तीनों प्रकार के बंध से जीत कर निकाता है।
तो वाक्य और सूक्ष्म ज्ञान में समझ में स्वीकार का नाश होता है। इसी से मैंने ऐसी भिन्नता करने से सर्व कर्मों का नाश होकर के सिद्ध पद की प्राप्ति निश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। की प्राप्ति पश्चिम काल में किसी को नहीं होती है, ऐसा हमारा आदम बोलता है। तो बार बार ये सभी ग्रंथों में मोक्ष की और ईश्वर की बात क्यों लेते हैं, ज्ञानी और आचार्य क्यों लेते हैं, भाई यहाँ पर क्यों नहीं आता है? जितने ईश्वर की प्राप्ति पश्चिम काल में तो किसी को होती नहीं, तो फिर यहाँ ईश्वर की बात क्यों आती है? तो जो पूर्णता का लक्ष्य है शुरू से ही, तो पूर्ण ही जाएगा, इसकी भावना में पूर्ण होने की ही बात है। तो ये भावना वास्तविकता को बिल्कुल नहीं है। भावना ऐसी प्रबल होती है कि ये वास्तविकता है कि अभी मोक्ष नहीं होने वाला, लेकिन वो होने नहीं है। इसका बहुत बड़ा स्वरूप है हमारे तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए उनको तीर्थंकर प्रशक्ति का बद जो हुआ वो सोलह काल में भावना है ना, इसमें मेरी वास्तविक भावना बहुत उनको प्रबल होती है। प्रभावना और वास्तविक दो भावना तीर्थंकर को बहुत प्रबल होती है, उसकी प्रकृति जन्य परिणाम है। तो तीर्थंकर की जो प्रकृति है ये जन्य परिणाम है, तो बहुत जोर से आता है, इतनी जोर से आती है कि जगत के सभी जीव को इस जन्म में ला दू। तो जगत में तो अभव्य है ना के नएंगे, पर अभव्य से भी भव्य कितने ऐसे कि अभव्यता में माथा पड़े ऐसे हो जाए कहा जाएंगे, तुम भूल जाते हैं। तो देखिए मैं तो सबको ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, भावना वास्तविकता तो नहीं जीव की नहीं करते। दूसरा बहुत बड़ा समय जो सिफार होता है, सिफारो देव को इतना सिफार जोर से चला समयम व्यक्त और होते ही इतना जोर से सिफार चलता था उतना, तो जब मैं बार बार सिफारो की ओर में इसको ले सकता हूँ, मार सकता हूँ, तो ये तो अंतर्मुख का काम है। वो तो होता है कि मुझे दशा में तो अंतर्मुख दो घड़ी के अंदर अंदर चिंता आई, जीवन का मुस्कुल हो जाता है। अगर मैं तो स्थिर हो सकता हूँ, बार बार उठता भी हूँ, तो मैं स्थिर क्यों नहीं रहूंगा? सबके पास दिखती नहीं है, तो मैं तो इसी घर में लोक में जाना चाहूंगा, तो मुझे तो जाना है, मुझे तो लोक में जाना ही है। किसी ने कहा कि साहब हमारे आगम को ना बोलता है, हमारे आगम को तो मंजूर नहीं है आपके भाव में, तो मैं आदम आदम की जाने मैं मेरे प्रसाद को देखता हूँ, मैं आदम को अभी नहीं देखता हूँ। परमात्मा उनको ऐसा ही मानते हैं, कुछ भगवान को कहते हैं परमात्मा, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है, कि हमारा पुरुषार्थ होता है। फिर भी जैन ग्रंथों में देखो हमारे ग्रंथ में नहीं बोले क्या कौन है इसमें, हमारे ग्रंथ में ऐसी बात नहीं है। जैन ग्रंथों में प्रतिपादन हुआ है, कहीं कोई जगह प्रतिपादन है, कोई कोने कोने उन्होंने में वो बात पड़ी है, उसके कोने में कोई सुन नहीं देते इस बात को। तदनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो, तदनुसार नहीं होता हो, तो भी इसमें मर्यादा इस बात को, तो इस क्षेत्र में जो प्रतिपादन सुनो, हम इस क्षेत्र से नहीं जाएंगे, हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। जब हमारा प्रसाद तीव्र होगा, तुमको ध्यान को कहने लगाने लायक, तो हम तो लक्ष्मी से मामले क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां से तो होता है, लेकिन हमको जाएंगे।
ये था ये हो जाएगा, क्या पावर है। और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा हमको तो मोक्ष से बढ़कर कुछ पड़ी गई है, ऐसा योग प्रदान कर कि हम सबको उसके चरण के चरण का ध्यान करते हैं, उसके चरण में बैठकर उसके समय दे रहे हैं, हमको फिर मोक्ष भी मिल जाएगी। तो सतपुरुष के चरण में क्या चीज होगी तो मोक्ष भी बढ़िया होती है। तो बेटावा बेटावा क्या हम बेटावा का भक्त तो कहते हैं उन्हें ज्ञान के समय बोलते हैं उम्र में, तो फिर महीना हो गया है ज्ञान के समय फिर बोल गया। इसमें बात जो है छुपा हुआ है इसमें यहाँ तक की बात करता है। बात है कि प्रत्यक्ष है और स्वरूप प्रत्यक्षता से मोक्ष भी होता है, होने वाला भी है, लेकिन दरकार किसकी है ये बताना जो सब बात है वो और किसम में जाते बाउंड्री नहीं है उसको कैसे बात है बाउंड्री जैसी भी नहीं वहाँ बाउंड्री जैसी भी संवेदन को देखते ही हमको तो संवेदन आता है। उनके वेद ज्ञान को देखते ही हमको वेद ज्ञान होने लगता है, चंबा चालू हो जाती है और उससे निश्चय होता है। ये ज्ञान करने की पद्धति है, आत्मज्ञान करने की सही पद्धति नहीं है, इसलिए निश्चय होता है कि उस योग का और प्रत्यक्ष चिंतन का फल मोक्ष होता है। ऐसा प्रत्यक्ष योग का फल मोक्ष है और प्रत्यक्ष योग में जो प्रत्यक्ष दिखाई दिया इसका परिणाम उसका फल मोक्ष होता है। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है। सत्पुरुष मोक्ष साक्षात मोक्ष है, ऐसा मूर्तिमान मोक्ष है, मोक्ष की प्रतिमा तो वही है।
ज्ञानी तो परमात्मा ही है,
मुझसे पहचान बिना परमात्मा की हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए सर्वथा भक्ति करने जैसे देहधारी गुरु मुक्ति ज्ञान रूपी परमात्मा को ज्ञानी रूपी परमात्मा के नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति से हम प्रत्येक लय आराधन करना ऐसा शास्त्रों का आशय है। शास्त्र इस बात को हर शास्त्र इंगित करता है कि देखो जी बात देखो हमने भूषण भी दिखाया है तो इससे अभी वो भी बात करता है क्योंकि जानने का है इसमें लोगों का नहीं करता है तो दिया है भूषण दिया है तो चित पद को पीछे रखकर अनादित अनंत पद को आगे क्यों रखा गया तो बात दिया है इसी कारण से तो प्रत्यक्ष लोग इसका कोई मूल्य इसका कोई दूसरा पर्याय हो सकता तो बताया।